अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छता को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। सभी सुनने वालों को चंद्रिका जोशी का नमस्कार। मनोरम घाटियां, घने जंगल, झरने, हरी भरी चाय के बागान, वन्य जीवन, विभिन्न वनस्पतियां और लोग, साथ ही उनकी संस्कृति, परंपराएं, विरासत, भोजन की विशिष्ट पहचान जहां मन को आनंद देते हैं, वहीं संकेत ही संकेत में ये बता देते हैं कि आप और कहीं नहीं, आप हैं देश के प्यारे और सुंदर से पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर के विकास के बारे में विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम करते रहने से पूर्वोत्तर राज्यों की अपार क्षमता, कौशल और साथ ही अद्भुत विरासत सबके सामने है। विकास प्रमुख कार्यों से अब पूर्वोत्तर के सभी राज्य देश के अन्य राज्यों के साथ ही कदम से कदम मिलाकर नव विकास की ओर चल रहे हैं और पूर्वोत्तर की इसी शक्ति पर देश गर्व करता है। हमारा पूर्वोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है और अप्रतिम सुंदर और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विरासत को संभाले हुए है। आइए आज आपको सबसे पहले पूर्वोत्तर के सुंदर से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर लिए चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी भूभाग में कुछ हिस्सा पहाड़ी भी है और मैदानी भी। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर जाती है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप नदियाँ इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। अरुणाचल का अधिकांश हिस्सा हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप कटकाई पहाड़ियों में स्थित है। कांगटो, नेगी, कांगसांग, मुख्य गोरीचंद चोटी और पूर्वी गोरीचंद चोटी इस क्षेत्र की हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तवांग में स्थित बुमला दर्रा 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांग्याप दर्रा, डीफू दर्रा, कांगसो दर्रा भी शामिल है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसे चीन से अलग करता है। ये पर्वतमाला नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत और म्यांमार के बीच चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में भी इसे हम कह सकते हैं कि कार्य करती है। ये पहाड़ हिमालय से कुछ कम ऊंचे हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवन की बात करें तो जीवन यापन का मुख्य आधार यहाँ कृषि है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था आमतौर पर झूम खेती पर आधारित है। आजकल नकदी फसलों जैसे आलू और बागवानी की फसलें जैसे सेब, संतरा और अनानास, इनकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग खेती के पारंपरिक विधि शीइंग यानी झूम का प्रयोग करते हैं। इस कृषि विधि की मुख्य पैदावार चावल, मक्का, जौ और मूठी यानी कुट्टू है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन शामिल है।
अरुणाचल की बात करो क्या है,
अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की बात भी करते हैं। यहाँ के समुदायों में अदीस समुदाय का मापिन और सोलंगू, मोनपा समुदाय का त्योहार लोसर, आपकानी समुदाय का द्री, कजिने समुदाय का सी दोनियाई, इदू मिशनी समुदाय का रेह, मिशिंग समुदाय का न्योकुम, ये सब त्योहार यहाँ धूमधाम से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। अधिकतर त्योहारों पर पशु बलि चढ़ाने की एक पुरातन परंपरा है जो अब बदल रही है। चलिए अब खूबसूरत अरुणाचल के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताते चलें। अरुणाचल प्रदेश अपने पहाड़ी दृश्यों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात ईटा किला की। ईटानगर में पर्यटक ईटा किला देख सकते हैं। इस किले का निर्माण कहते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के मध्य किया गया था और इसके नाम पर ही ईटानगर का नाम रखा गया। इस किले में कई खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। किले की सैर के बाद आप यहां एक पौराणिक गंगा झील कही जाती है, उसका आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य झीलें भी हैं। इसके साथ ही वास्तुकला के मनोहर दृश्य हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब पौराणिक गंगा झील के बारे में बात करते हैं। गंगा झील ईटानगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। झील के पास एक खूबसूरत सा जंगल भी है। ये जंगल इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ सुंदर पेड़ पौधे, वन्य जीव, फूलों के बागीचे देख सकते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को इस झील और साथ ही लगे जंगल की सैर जरूर करनी चाहिए। और अब बात बौद्ध मंदिर की।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स।
नामसाई स्थित स्वर्ण पैगोडा यहाँ का एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इसकी यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीली है और इसका निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। इस मंदिर की छत से पूरे ईटानगर के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में एक संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। यहाँ पर पर्यटक समूचे अरुणाचल प्रदेश की बहुत खूबसूरत मन लुभावनी तस्वीरें देख सकते हैं, यानी ऐसे प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, शानदार कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी बनाया गया है। यहाँ पर्यटक कई शानदार अन्य पर्यटन स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। इनमें जो मुख्य है वो हम आपको बताते हैं, दोनी पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान इनमें प्रमुख हैं। तो चले आइए अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में दक्षिण कोरिया के लोकप्रिय गायक आओरा ने गुवाहाटी का दौरा किया था। उनके साथ एक बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। बातचीत कर रहे हैं हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रदीप शर्मा।
दिस इवनिंग वी आर जॉइंड बाय वेरी स्पेशल गेस्ट हियर इन गुवाहाटी लाहेलूम स्टेट ऑफ द आर्ट हैंडलूम सेंटर एंड वी आर जॉइंड बाय नन अदर देन एनसी पॉपुलर सिंगर आओरा हु इज अ फैशन आइकन, a fashion stylist, then the producer and the writer, and a popular singer. What else?
K-pop singer.
Yeah.
And actor.
Oh. I'm not here. Okay. So nice to have you. Tell us about for the first time you have been in Guwahati in Assam.
Yeah.
So how do you like this place?
In Guwahati, right?
Yeah.
So first time in airport, Lichit Airport is so very freshy smelling.
Very good.
Really freshy smell.
Yeah. Alright. And you're in the Big Boss.
Yeah.
Right?
Mm-hmm.
So there are some experiences that you like that?
In Big Boss, so first very enjoying and after so many learning. Some people and friends, relationships and some food, make food, some more workout. Yeah. And now very very good memory.
Good memory.
Yes.
And how do you like Salman Khan?
Yes.
How do you enjoy his relations?
Now so many Salman Khan sir, respecting so many carefully me and me because me so foreigner and some the last time some many carefully I think wow so more and more respect him I think Salman Khan more.
Okay, so what do you like most? You are an actor, you are a singer, so what do you prefer? Doing acting only or performing on the stage, singing?
Yeah, now singing.
Now singing, yeah.
Me some in Korea on some boy band 2011 baby after 4 years after solo activity and two now.
And tell us about your experience with the Indian music.
Yeah.
For a long time.
So many content, so many values of song and music and actor, Tamil, Telugu, more Punjab, now Assam also, so wow, very interesting and some city also, very very different culture and music. Now, oh, I want to go there and this time, after this time, more many in India content, music, follow. I'm very lucky guy and now some many Indian people meet and working. I'm so very lucky.
And you're performing for the last 10-12 years have you across the globe, all around the world. So where do you like most, you know, which continent do you like to perform most? How do you see the ambience in India while you're performing? You've been to Chandigarh, Delhi and other places.
People in Chandigarh, Mumbai, Delhi, Uttar Pradesh.
Yeah, UP.
Yeah, UP. Kanpur, Lucknow. And Amritsar.
Amritsar, yeah.
Punjab. Little bit from different.
Okay.
Style.
Mm-hmm.
Oh. Yeah, and then now, I want to more meet some city.
Yeah, more cities. Right. So, do you want to play some Indian music? Like to sing our Akash Bani, some Indian music. Can you sing something?
My song in India song and Korea song, we mixed.
That's nice. Are you familiar with the Assamese song?
Yeah. Teaching me.
Yeah.
Yesterday, I will try. Tetaki
Kurwa. Yes, so please go ahead. This song to the all the listeners, Assamese song is sung by Aura.
Yeah.
Hey, awesome. Now tell us about this, you know.
Yeah.
This handloom.
Yeah.
You are also in this.
Yeah, very interesting.
Yeah. Assamese handloom.
Yeah. Some video.
Yeah.
Some very interesting.
Mm-hmm.
Some one.
Mm-hmm.
Very artistic.
Yeah. Right.
And then some very amazing, very nice. I think this fact.
Have you seen any similar things in Indian, you know, this Assamese handlooms and back in your Seoul, your South Korean?
Korea wearing some hanbok.
Hanbok. Okay.
Yeah, hanbok like this taste similar.
Mm-hmm.
But I think no hand man.
Machine man.
Yeah, machine man.
Okay.
Really amazing.
Okay. So you have you are performing tonight in Guwahati.
Yeah.
Okay. So this will be your first event in Guwahati.
Yeah.
So how exciting you are?
I think very clean, very exciting.
You are going to play this Bihu song also.
Yeah, Bihu song.
Excellent. And tell us about your future projects, your planning, what do you like to do in planning,
Now more focusing on music and Christmas also, my new song, Holy song also, and let's do some more musician and together collaboration and some
second thing, one like
Amphoga.
Yeah, please.
아주 비라심의 홀리데이야.
Yeah, this is awesome. Yeah. So when you are going to release this song?
Fifteen.
Yeah. All the best. And you are here as you have been invited by this group.
We did,
right? We are here in the Lahalung. You have been invited by Eden.
Eden Entertainment.
Okay. So.
You tell us about the Samti. How do you like this? You have tested now your impression on the Samti. In the pop and Kanjadi, every day talking Samti about Pita. Yes, this time very curious. Oh, why is Pita and why is Samti? Sometimes after the course, go to Assam. I will try Pita and Samti. Today,
at the Lahalung.
Thank you for the video also.
बातचीत सुन रहे थे बातचीत कर रहे थे हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस रतन शर्मा. अब चलते हैं सिक्किम की ओर. गैंगटॉक में बीती सप्ताह महिला दिवस का आयोजन किया गया. गैंगटॉक में सिक्किम राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह वास्तव में सशक्तिकरण और प्रेरणा का प्रतीक था. International Women's Day was celebrated and observed at Sikkim Bhavan Gangtok, northeastern region organized by the Sikkim State Commission for Women. This event was a beacon of empowerment and inspiration. The program witnessed a gathering of luminaries. Rashtriya Mahila Ayog ki adhyaksha Sushri Rekha Sharma aur Sikkim Rajya Mahila Ayog ki adhyaksha Sushri Chunkipa Lepcha sahit vishisht atithiyon ne vibhinn kshetron mein उल्लेखनीय हस्तियों के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाई. कार्यक्रम में शिक्षा, उद्यमिता और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया और साथ ही साथ कुछ व्यावहारिक संबोधन भी दिए गए. संवादात्मक चर्चाएं हुई, इससे संवाद और जागरूकता समृद्ध हुई और साथ ही साथ लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में सहयोग को प्रोत्साहन दिया गया. सुश्री रेखा शर्मा ने लड़कियों को सशक्त बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और युवाओं को अपनी उपलब्धियों को साझा करने, साथियों के बीच प्रेरणा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया. इसी तरह सुश्री चुनकिपा लेप्चा ने टू बोल्ड नारे की सराहना की और सिक्किम राज्य में महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाने में सिक्किम के मुख्यमंत्री के समर्थन को स्वीकार किया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करने में सिक्किम राज्य महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से प्रेरणादायक कहानियां भी सामने आई। इसमें श्रीमती क्लाउडिया लिंगा भी शामिल हैं, जिनकी सहायक कमांडेंट से लेकर भारतीय रिजर्व बटालियन के प्रथम बैच के प्रशिक्षण तक की यात्रा को विस्तार से सबके सामने रखा गया और ये समर्पण का एक उदाहरण थी। सुश्री तिथि देव बर्मन ने सशक्त महिलाओं की अवधारणा पर गहराई से विचार किया और सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता के लिए उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों की पुरजोर वकालत की। सुश्री ताशी चोडेन ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा को साझा किया। इसमें सिक्किम की कॉफी को राज्य के भीतर एक प्रमुख ब्रांड के रूप में स्थापित करने में सामने आने वाली चुनौतियों और फिर चुनौतियों के बावजूद हासिल किए गए लक्ष्य पर प्रकाश डाला। डॉक्टर थेई सिन्हो के बिस्सू ने परंपरा और विरासत के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हुए स्वदेशी फैशन को प्रोत्साहन देने के लिए सांस्कृतिक पोशाक को संरक्षित करने और साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। रेनचेन वांगमो गोलमो ने उभरते उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए दार्जिलिंग के एक बेकर के रूप में अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भरता और लचीलेपन के रूप के महत्व को रेखांकित किया। संवादात्मक चर्चाओं ने जहां संवाद को और समृद्ध किया, वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को बल देने के लिए विशेष रूप से महत्व दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के वरिष्ठ समन्वयक सुश्री एम लीलावती के गर्मजोशी से भरे स्वागत भाषण से हुई और सिक्किम राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव सुश्री यूसा लाचिनका द्वारा व्यक्त किए गए हार्दिक आभार के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।
लीलावती Senior Coordinator of the National Commission for Women and completed with heartfelt gratitude expressed by Ms. Yosha Lachenpa, Member Secretary of the Sikkim State Commission for Women. With Dili Randulal, this is Tashan Mugutia from Sikkim.
खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के HADC द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तीसरा मोनोलिथ फेस्टिवल 9 मार्च को खासी हेरिटेज विलेज में आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक समारोह का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई और पर्यटन विभाग के मंत्री पॉल लिंगडोह सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। मोनोलिथ महोत्सव के महत्व पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने किसी भी समुदाय के लिए संस्कृति और पहचान के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हमें अपनी पहचान और समृद्ध संस्कृति की विरासत को याद दिलाने और बाकी दुनिया के सामने इसे प्रदर्शित करने के लिए आयोजन करने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने तीनों जिला परिषदों को सरकारी समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। सीएम रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एक पहल करते हुए कला और संस्कृति मंत्री पॉल लिंगडोह ने कहा कि शोधकर्ता और विद्वान को वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए की फंडिंग दी जाएगी, जिससे 50 शोधकर्ता राज्य की संस्कृति और ऐतिहासिक पहलुओं को जानने में मदद करेंगे। इस संबंध में उन्होंने आवेदकों की स्क्रीनिंग के लिए एक समिति के गठन की घोषणा भी की, जो अनुसंधान परियोजनाओं पर सरकार के साथ सहयोग करेगी। KHADC ने मोनोलिथ फेस्टिवल को वार्षिक आयोजन बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। इस महोत्सव का उद्देश्य खासी संस्कृति को प्रदर्शित करना है, लेकिन पारंपरिक छोटे और स्थानीय त्योहारों के साथ साथ जो आमतौर पर पारंपरिक होते हैं, मोनोलिथ फेस्टिवल एक बड़ा और 21वीं सदी का आयोजन कहा जा सकता है। इसे सभी क्षेत्रों के लोग घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी इसमें एकत्रित होते हैं। अपने संबोधन के दौरान कला और संस्कृति मंत्री पाल लिंगोह ने जनजातीय समुदायों को मजबूत करने वाली तीन आधारशिलाओं पर बल दिया। ये आधारशिलाएं हैं भूमि, वंश और भाषा। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के सदस्य अभिजीत क्रो ने पहली बार उत्सव में भाग लेने, वहाँ के सुहावने मौसम और भोजन का आनंद लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कार्बी आंगलोंग में रहने वाले खासी लोगों की उपस्थिति का उल्लेख किया और डिफू में खासी गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की भी घोषणा की। महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी खासी समुदाय की समृद्ध संस्कृति और विरासत को भी संरक्षित करना है।
The Monolith Festival is meant to preserve and protect the rich culture and heritage of the indigenous Khasi community. The festival is a modern tourist-driven exercise far different from traditional religiously oriented festivals like the Shatmangalam or Vedangalam. This is Ramsan Muspoon from AIM New Zealand.
भारत का बेहद सुंदर भूभाग तो है ही, यहाँ लोगों ने अपनी परंपराओं को बनाए रखा है। नए आचार विचार और व्यवहार के साथ नूतन और पुरातन का सुंदर समन्वय आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही है सहज सरल जीवन शैली और सहज अपनापन, यहाँ आकर आप महसूस कर सकते हैं इसे। तो चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। हवाई, सड़क और रेल संपर्क आपको यहाँ आरामदायक सफर के साथ ले आएगा। इसके साथ ही अब आपसे आज के पूर्वोत्तर डायरी के इस अंक से अनुमति लेने को समय कह रहा है। अगले रविवार ठीक शाम 5:30 बजे फिर आने के वादे के साथ अब अनुमति दीजिए।
হাজার পাহাড় মই বগা বনে জানো নিহার তিনর কিনি।
लेकिन हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा ही हमें इंतजार रहता है। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9289094044। नंबर दोहरा रहे हैं
9289094044।
आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी।
দেখল কোন গাভরা কথা, দেখল কোন আই তার শিখার সাধু কথা, দেখল কোন রং মনার কটিয়া তলির ব্যথা, সীমা সীমা তুর কি তিনি বনে জান নতুন রাতি পুয়া রঙার রোদ পরে দুরাগর কুপলিবর ভয় পুরা মারে, জাগি উঠা মানুহে হাজার শিয়র মারে, তাতে ফেটা লাগি হাজার পাহাড় ভাঙি পরে, তাতে ফেটা লাগি হাজার পাহাড় ভাঙি পরে, মানব সাগর তোলা।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी कथा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.